अच्छा भाई देखिए सबक भाई आगे मतन देख लें। व इल्ला फारजुन मुफारिकुन यदूमु औ यजूलु बिसुरातिन औ बुतूइन। गुज़श्ता सबक में हमने खासा और आरज हाम के बारे में पढ़ा था। इन्होंने आपको बतलाया था कि खासा जो है वो माहियत की हकीकत से खारिज होता है, यानी सिफत होता है और एक ही हकीकत के अफराद पर बोला जाता है, जबकि आरज आम जो है वो भी हकीकत से खारिज होता है माहियत की, लेकिन वो मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद पर बोला जाता है। और फिर इसके बाद इन्होंने शरह में आपको बतलाया था कि जो मतन में वहुवल खारिज आया, ये खारिज किसकी सिफत है? कुल्ली की सिफत है। तो ये खारिज जो है कुल्ली की सिफत है और इससे मुराद खासा है, क्योंकि खासा भी कुल्ली है, कुल्ली की किस्म है और किस्म के अंदर मकसम की रियायत होती है, किस्म के अंदर मकसम मोतबर होता है। जैसे कलिमा की किस्म है इसम फेल और हर्फ, तो हर किस्म के अंदर वो मकसम मलहूज है, यानी इसम भी कलिमा है, फेल भी कलिमा है और हर्फ भी कलिमा है। और इसी वजह से इन्होंने हुआ की जमीर खासा की तरफ राजिया की, यानी उसको कुल्ली की तावील में लिया, क्योंकि वो कुल्ली की किस्म है भाई। उसके बाद फिर इन्होंने आपको बतलाया कि खासा दो किस्म पर है, एक खासा शामिला और एक खासा गैर शामिला। खासा शामिला वो है जो अपनी हकीकत के तमाम अफराद पर सादिक है, यानी तमाम अफराद को शामिल हो, यानी खासा शामिला वो है जो एक हकीकत के तमाम अफराद को शामिल हो, यानी सब सब में वो सिफत पाई जाए, उसको क्या कहेंगे? खासा शामिला। और अगर एक हकीकत के तमाम अफराद के अंदर वो सिफत मौजूद नहीं तो उसको खासा गैरे शामिला कहते हैं। और इसकी मिसाल मैंने जिक्र की थी कि कातिब बिल कुवा और कातिब बिल फेल। बिलफेल का माना मैंने बतलाया था, बिलफेल का माना यह है कि कोई उस चीज को उसी वक्त सर अंजाम दे रहा हो, कर रहा हो, तो उसको कहते हैं कि यह चीज बिलफेल इस वक्त इसकी सिफत है। जैसे कोई शख्स हंस रहा है तो हम कहेंगे यह जाहिक बिलफेल है। इसी तरह कोई लिख रहा है तो हम कहेंगे ये कातिब बिल फेल है, यानी ये किताबत वाला फेल इस वक्त कर रहा है, किताबत का फेल इस वक्त बाकायदा फेल के तौर पर इसकी सिफत है कि उसको सरंजाम दे रहा है। जबकि एक है बिलकुवा, बिलकुवा के अंदर उस सिफत का बिल फेल होना उस वक्त जरूरी नहीं होता, बल्कि माना यह होता है कि उसमें इस चीज की सलाहियत है। जैसे हर इंसान वो क्या है? कातिब बिलकुवा है, चाहे उसने किताबत सीखी है या नहीं सीखी, लेकिन सलाहियत है, वो सीख सकता है। इसी तरह हर इंसान जाहिक बिल फेल है, चाहे वो हंस रहा है या हंस नहीं रहा, लेकिन उसमें हंसने की सलाहियत है। तो यही कातिब बिलकुवा, ये खासा शामिला है। तमाम इंसान के अफराद क्या हैं? कातिब बिलकुवा हैं, उनमें किताबत की सलाहियत है, चाहे किताबत सीखी है चाहे नहीं सीखी, लेकिन सलाहियत है, सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। जबकि तमाम अफराद इंसान वो कातिब बिलफेल नहीं। कातिब बिलफेल तो सिर्फ वो होगा जो फिल हाल क्या कर रहा हो? किताबत कर रहा हो, लिख रहा हो। तो कातिब बिलफेल ये खासा गैर शामिला की मिसाल है कि तमाम अफराद इससे इस वक्त मौसूफ नहीं है, बल्कि जो जो लिख रहे हैं सिर्फ वो इससे मौसूफ हैं। तो कातिब बिलकुवा ये मिसाल है खासा शामिला की, और कातिब बिलफेल जो है ये मिसाल है खासा गैर शामिला की भाई। उसके बाद इन्होंने आपको ये भी बतलाया था कि ये जो खासा है ये खासा दो किस्म पर है, एक खासा तो नौ है और एक खासा तुल जिन्स है। खासा तो नौ वो है जो एक हकीकत नौइया के साथ खास हो, और खासतुल जिन्स वो है जो एक हकीकत जिन्सिया के साथ खास हो। खासतुल नौ की मिसाल जैसे जाहिक, जैसे जाहिक वो एक हकीकत के अफराद यानी हकीकत नौइया के साथ खास है, और खासतुल जिन्स की मिसाल जैसे माशी, माशी ये भी एक हकीकत के अफराद यानी हैवान के साथ खास है। हैवान के तहत तो अनवा हैं लेकिन अनवा से कतई नजर हैवान पर सिर्फ नजर रखें। हैवान के जितने भी अफराद हैं उनकी हकीकत क्या है? वो हैवान हैं। वो क्या हैं? हैवान हैं। तो ये हकीकत जिनसिया का खासा हुआ, तो ये खासतुल जिन्स है। इस पर फिर इश्काल हुआ था कि ये तो की सूरत में एक ही चीज जो है वो एक ही आरज जो है वो खासा भी कहलाएगी और वो आरज आम भी कहलाएगी। यही माशी अगर इंसान की तरफ निस्बत करें तो ये माशी क्या कहलाएगा? आरज आम। क्या कहलाएगा? क्योंकि ये सिर्फ इंसान में तो नहीं पाया जाता, ये तो और हैवानात में भी पाया जाता है। और यही माशी सिर्फ हैवान की तरफ निस्बत करें तो इसी माशी को क्या कहेंगे? खासा कहेंगे, खासतुल जिन्स, कि ये इस जिन्स के हकीकत के साथ खास है। तो एक ही चीज यानी माशी यानी को एक ही आरज जो है उसको खासा भी कहना पड़ेगा और उसको आरज आम भी कहना पड़ेगा। एतराज ये कि खासा और आरज आम ये तो कसीमैन हैं और कसीमैन तो आपस में मुतबाइन होती हैं, वो जमा नहीं होती। जैसे कलिमा की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। कलिमा की निस्बत से ये किस्में कहलाती हैं लेकिन खुद आपस में ये किस्में क्या कहलाती हैं? कसीम कहलाती हैं एक दूसरे की निस्बत से। इसी तरह कुल्ली आरजी की दो किस्में इन्होंने बयान कर दी, एक क्या खासा और एक आरज आम। जब ये दो किस्में हैं कुल्ली आरजी की तो ये आपस में कसीमैन हुई और कसीमैन जमा नहीं होती। एक चीज या खासा हो सकती है या आरज आम हो सकती है क्योंकि कसीमैन आपस में मुतबाइनैन होती हैं, जमा नहीं हो सकती। तो यहां आपकी इस तारीफ से तो माशी के अंदर दोनों जमा हो गई। यही माशी इंसान की तरफ निस्बत करें तो अरज आम है और यही माशी हकीकत जिन्सिया यानी जिन्स यानी हैवान की तरफ निस्बत करें तो यही क्या है? खासा है। तो जवाब दिया था कि भाई यहां जिहत मुख्तलिफ है। जिहत क्या है? मुख्तलिफ है, यानी यह खासा है हकीकत जिन्सिया के एतबार से और ये अरज आम है हकीकत नौइया के एतबार से। तवज्जो है? तो ये जिहत अलग अलग है। जैसे एक ही शख्स जो है वो बाप भी होता है और बेटा भी होता है लेकिन वो बाप होता है अपने बेटे की निस्बत से और वही शख्स बेटा होता है अपने बाप की निस्बत से। भाई तो जिहत अलग अलग है लेकिन बहरहाल ये बड़ा कमजोर जवाब है भाई, बड़ा ही कमजोर जवाब है क्योंकि जो कसीमैन होती हैं उनमें सिर्फ जिहत का फर्क नहीं होता, उनकी जात ही अलग अलग होती है, वो इकट्ठे हो ही नहीं सकते भाई। ये तो जिहत का जवाब देकर वैसे ही जान छुड़ाने वाली बात है कि जिहत अलग अलग है भाई। नहीं भाई, कसीमैन में सिर्फ जिहत नहीं अलग होती, उनकी जात ही अलग होती है। जैसे कलिमा की कितनी किस्में हैं? इसम, फेल और हर्फ। अब कोई ऐसा कलीमा नहीं कि आप कहें ये एक जिहत से तो इसम है, दूसरी जिहत से ये क्या है? फेल है। बल्कि कलीमे के बारे में वाजे जो भी लफ्ज आएगा अरबी का वाजे आपको बताते हैं नहवी उलमा कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। वहां ये नहीं कहते कि एक जिहत से इसम है तो दूसरी जिहत से फेल है। तो ये बड़ा ही कमजोर जवाब इन्होंने दिया भाई। इसीलिए हाशिए में यह जवाब जिक्र किया गया है अल्लाहुम्मा इल्ला अन युकाल से। अल्लाहुम्मा जवाब में कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला अन युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए कि जिहत क्या है दोनों में। एतराज क्या हुआ था कि ये तो एक ही चीज क्या हुई? खासा भी बन गई और अरज आम भी, हालांकि खासा और अरज आम तो कसीमैन है और इनमें तो तबायुन होता है। तो जवाब फिर उसका दिया था अल्लाहुम्मा इल्ला अन युकाल के साथ कि भाई जिहत अलग अलग है। और याद रखो अल्लाहुम्मा इल्ला अन युकाल के जरिए जो जवाब दिया जाता है वो कमजोर जवाब होता है, बड़ा ही कमजोर जवाब। यानी और तो कोई जवाब इसका बन ही नहीं सकता। हां बस सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि जिहत अलग अलग है। बात समझ में आ गई? तो अल्लाहुम्मा के जरिए बड़ा ही कमजोर जवाब जिक्र किया जाता है। चुनांचे हाशिए में भी इन्होंने इसी तरह जवाब दिया है। उसके बाद गुज़श्ता सबक में खासा और आरज आम की इन्होंने तकसीम शुरू की थी और बतलाया था कि खासा और आरज आम यानी कुल्ली आरजी, कुल्ली आरजी देखो दोनों को शामिल है, चाहे खासा हो चाहे आरज आम। तो कुल्ली अरजी जो है या तो ये अपने मारूस से जुदा हो सकेगी या जुदा नहीं हो सकती। अगर जुदा हो सकती है तो इसको अरज मुफारिक कहते हैं, और अगर ये जुदा नहीं हो सकती, इसका जुदा होना मुमकिन ही नहीं है, तो इसको लाजिम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाजिम कहते हैं। और फिर इस लाजिम की दो तकसीमें की थी, एक तकसीम थी मलजूम के एतबार से और एक तकसीम थी लुजूम के एतबार से। मलजूम के एतबार से बतलाया था कि जो लाजिम है यह तीन किस्म पर है, या यह लाजिमुल माहियत होगा, या यह लाजिमुल वजूदुल ज़हनी होगा, या यह लाजिमुल वजूदुल खारिजी होगा। भाई लाजिमुल माहियत वो लाजिम, वो अरज जो एक माहियत के साथ लाजिम है, जैसे चार के साथ जुफ्त होना लाजिम है, कतई नजर खारिज और जहन के। बास चीजें सिर्फ जहन में लाजिम, बास चीजें सिर्फ खारिज में लाजिम, लेकिन चार के साथ जुफ्त होना इस माहियत के साथ लाजिम है, कतई नजर वजूद खारिजी के और कतई नजर वजूद जहनी के। जहन में भी कोई चीज सोचोगे जो चार हो तो वो क्या होगी? जुफ्त होगी। खारिज में भी कोई चीज सोचोगे जो चार हो तो वो क्या होगी? जुफ्त होगी। तो ये जुफ्त होना क्या है? चार के साथ लाजिम है, इस माहियत के साथ। और एक है लाजिम वजूद खारिजी, वो अरज जो वजूद खारिजी के साथ लाजिम हो, वजूद जहनी के साथ लाजिम ना हो, जैसे आग के साथ जलाना। आग जलाना ये आग की सिफत है, लेकिन कौन सी आग? जो कहां पाई जाए? खारिज में पाई जाए। जहन में आग का तसव्वुर करें तो यहां इसके साथ जलाना नहीं है। और कभी जो अरज होती है वो वजूद जहनी के साथ लाजिम होती है, जैसे जैसे इंसान का कुल्ली होना या जैद का जुजी होना। तो इंसान का कुल्ली होना, ये देखो ये जहन में है, क्योंकि कुल्ली और जुजी किसका नाम है? मफहूम का नाम है, और मफहूम कहां होता है? जहन में होता है। तो इंसान क्या है? कुल्ली है या जुजी? कुल्ली है। देखो हमारे जहन में इंसान आता है, और जैसे ही इंसान आता है एक सिफत भी साथ आ जाती है कि ये क्या है? कुल्ली है। जैसे ही हमारे जहन में जैद आता है, हमारे जहन में साथ ही एक सिफत आ जाती है, क्या? के जुजी है। तो देखो ये कुल्ली और जुजी होना ये सिफत है लाजिम। सिफत कैसी है? लाजिम है। और किस चीज के साथ? वजूद खारजी के साथ या वजूद जहनी के साथ? वजूद जहनी के साथ। जहन में आप कोई भी चीज सोचेंगे तो साथ ही उसका कुल्ली या जुजी होना भी जहन में आ जाएगा। और ये जो कुल्ली और जुजी होना, इसको माकूल सानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माकूल सानी। माकूल वो चीज जो अकल में आए, और सानी यानी जो दूसरे दर्जे में आए, दूसरे मर्तबे पर आए। तो ये भी चूंकि दूसरे मर्तबे में और दूसरे दर्जे में आती है, पहले मारूज का तसव्वुर जहन में आता है और फिर आरिज यानी कुल्ली और जुजी होने का। पहले इंसान जहन में आएगा और फिर साथ ही क्या आ जाएगा कि ये क्या है? कुल्ली है। पहले फरस का जहन में तसव्वुर आएगा और साथ ही जहन में क्या आ जाएगा कि ये कुल्ली है। इसी तरह पहले जहन में जैसे ही जैद का तसव्वुर आएगा, साथ ही क्या सिफत आ जाएगी कि ये जुजी है। तो पहले मारूज यानी वो जिसको ये सिफत आरिज है, तो पहले मारूज का तसव्वुर जहन में आता है और फिर इस आरिज का। लिहाजा ये कुल्ली और जुजी, इसको माकूल सानी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे दर्जे में जहन में आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने लाजिम की तकसीम की थी बय्यिन और गैर बय्यिन की तरफ, और बय्यिन के दो माना बयान किए थे भाई, एक बय्यिन बिमान अल अखस और एक बय्यिन बिमान अल आम। भाई तवज्जो है जी। तो गोया दर हकीकत ये दो तकसीमें हैं। दर हकीकत कितनी तकसीमें हैं? ये दो तकसीमें हैं, बय्यिन और गैर बय्यिन वाली। एक बय्यिन क्या तारीफ की कि मलजूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर जहन में आ जाए, ये है बय्यिन बिमानल अखस। और इसके मुकाबले में होगा गैर बय्यिन बिलमानल अखस। वो क्या है? इसी की नकीस बना लो। ये क्या था कि मज़ूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर जहन में आ जाए, तो वो गैर बय्यिन बिमान अल अख़स क्या होगा कि मज़ूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर जहन में ना आए भाई। और दूसरे बय्यिन बिमान अल आम, वो क्या तारीफ की
मज़ूम का तसव्वुर
के कि मलजूम का भी तसव्वुर करें, लाजिम का भी तसव्वुर करें और इनके दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर करें, तो फिर जहन को यकीन हो जाता है कि यह सिफत इस चीज के साथ इस मलजूम के साथ लाजिम है, इससे जुदा नहीं हो सकती। तो दरअसल यूं समझें, ये दो तकसीमें हैं। कितनी?
दो
तकसीमें, लेकिन दोनों को बय्यिन और गैर बय्यिन कहते हैं। पहला बय्यिन क्या? कि मलजूम का तसव्वुर जहन में आए तो साथ ही किसका आ जाता है?
लाजिम
का भी। और गैर बय्यिन इसके मुकाबले में क्या बनेगा? कि मलजूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर जहन में ना आए। दूसरा बय्यिन का क्या माना करते हैं? कि मलजूम और लाजिम और इनके दरमियान निस्बत का तसव्वुर करें तो लुजूम का यकीन हो जाए कि यह सिफत इस माहियत के साथ लाजिम है। बात समझ में आ गई? फिर बोले दूसरा माना बय्यिन का क्या किया? कि मलजूम का तसव्वुर करें और लाजिम का तसव्वुर करें और निस्बत का तसव्वुर करें तो इनमें लुजूम का यकीन हो जाए। तो गैर बय्यिन क्या हुआ इसके मुकाबले में? फिर कि इन तीनों का तसव्वुर करने से लुजूम का यकीन ना आए। भाई तो पहला भी बय्यिन है और मुकाबले में क्या है? गैर बय्यिन। और दूसरा भी बय्यिन है और मुकाबले में क्या है? गैर बय्यिन। तो ये दरअसल दो तकसीमें हैं, दो अलग अलग तकसीमें हैं, लेकिन नाम दोनों के एक जैसे हैं। पहली किस्म भी बय्यिन और गैर बय्यिन, दूसरी किस्म भी बय्यिन और गैर बय्यिन। तो फर्क करने के लिए यूं कहते हैं कि पहला बय्यिन है बय्यिन बिमानल अखस और दूसरा बय्यिन है बय्यिन बिमानल अहम। तवज्जो है? फिर इनको अखस और आम क्यों कहते हैं? मैंने बतलाया था एक दूसरे की निस्बत से बय्यिन के दो माना कर दिए, लेकिन इनमें से जो पहला है वो है अखस और दूसरा क्या है? आम है। तवज्जो है? पहला क्या? अखस, दूसरा आम। जैसे इंसान और हैवान, इंसान क्या है? अखस, और किसके मुकाबले में? हैवान के मुकाबले में। और हैवान क्या है? आम, किसके मुकाबले में? इंसान के मुकाबले में। तो यहां पर भी बय्यिन के जो दो माना है वो एक दूसरे के एतबार से अखस और आम है। बय्यिन का पहला माना अखस किसके मुकाबले में? बय्यिन के दूसरे माना के मुकाबले में। और बय्यिन का दूसरा माना वो क्या है? आम है, किसके मुकाबले में? बय्यिन के पहले माना के मुकाबले में। तो वो अखस हुआ और सानी क्या हुआ? आम। और आप जानते हैं कि जहां भी अखस हो आम जरूर होता है, लेकिन जहां आम हो वहां अखस का होना जरूरी नहीं। जैसे इंसान क्या है? अखस, और हैवान क्या है? आम। जो भी इंसान होगा वो हमेशा क्या होगा? हैवान होगा। तो जहां अखस है वहां यूं को जो अखस है वो आम भी जरूर है, लेकिन जो आम हो उसका अखस होना जरूरी नहीं। यानी जो भी हैवान हो उसका इंसान होना जरूरी नहीं। तो यहां पर भी जहां पर बय्यिन का पहला माना होगा दूसरा जरूर पाया जाएगा, लेकिन जहां दूसरा माना हो वहां पहले का होना जरूरी नहीं। किस तरह? पहला माना क्या था भाई? देखो ये तकसीम है लुजूम के एतबार से। किस एतबार से? जहन को यकीन हो जाए कि दो चीजों में लुजूम है, जहन को यकीन हो जाए कि दो चीजों में लुजूम है। ये पहली चीज, ये जो मारूज है इसके साथ ये सिफत लाजिम है, जहन को यकीन हो जाए। तो पहली किस्म में जब आपने क्या सोचा, किसके बारे में? सिर्फ मलजूम का तसव्वुर किया तो साथ ही किसका तसव्वुर आ गया? लाजिम का भी तसव्वुर आ गया। तवज्जो है? जब मलजूम का तसव्वुर करते ही लाजिम का तसव्वुर आ जाता है, मालूम हुआ जहन को यकीन है कि इन दोनों में लुजूम है, ये दोनों जुदा ही नहीं हो सकते। जब भी तो जैसे ही मलजूम सोचते हो क्या आ जाता है? लाजिम भी। मालूम हुआ जहन को क्या है? यकीन है कि इन दोनों में लुजूम है। जैसे हातिम ताई का जैसे ही तसव्वुर करें जहन में क्या आ जाती है? सखावत। हकीकत में तो ये सखावत हातिम ताई के साथ लाजिम नहीं। हातिम ताई एक इंसान है, इंसान सखी भी हो सकता है और गैरे सखी भी, लेकिन उर्फ में आम लोग इसको क्या समझते हैं कि हातिम ताई के साथ सखावत लाजिम है। हातिम ताई हो और सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो इसको उर्फ में क्या समझते हैं? लाजिम। तो जैसे ही हातिम ताई का तसव्वुर आपने किया जहन में साथ ही क्या आ गई? सखावत भी आ गई। मालूम हुआ आपका जहन, आपके जहन को दोनों में लुजूम का यकीन है, आपके जहन को दोनों में लुजूम का यकीन के दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम है। यानी ये इस मलजूम के साथ ये सिफत क्या है? लाजिम है। जहां ये मलजूम पाया जाएगा ये सिफत जरूर पाई जाएगी, लाजिम है उसके साथ। तो देखो मलजूम का तसव्वुर करते ही किसका तसव्वुर आ जाता है? लाजिम का तसव्वुर। मालूम हुआ जहन को यकीन है कि ये इन दोनों में क्या है? लुजूम है। तो जब सिर्फ मलजूम का तसव्वुर करने से लुजूम का यकीन है, तवज्जो है, सिर्फ मलजूम का तसव्वुर करने से लुजूम का यकीन है, तो मलजूम का भी तसव्वुर करो, लाजिम का भी तसव्वुर करो, और उनके दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर करो, तो फिर तो बतरीके औला लुजूम का यकीन होगा। यूं कहो एक चीज के तसव्वुर यानी सिर्फ मलजूम के तसव्वुर से जहन को लुजूम का यकीन हो जाता है, तो तीन चीजों के तसव्वुर से तो उसको बतरीके औला क्या होगा, लुजूम का यकीन होगा। बात समझ में आ गई। तो जहां पहली किस्म होगी वहां दूसरी किस्म जरूर होगी, यानी जहां सिर्फ मलजूम के तसव्वुर से लुजूम का यकीन होता है वहां तीनों के तसव्वुर से बतरीके औला लुजूम का यकीन होगा। लेकिन जहां आम हो वहां अखस का होना जरूरी नहीं। जहां तीन चीजों के तसव्वुर से लुजूम का यकीन होता है वहां एक के तसव्वुर से लुजूम का यकीन होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। इसलिए पहले माना को क्या कहते हैं, लाजिम बय्यिन बिल मानल अखस। यूं कहें लाजिम को बिना जिक्र करें, लाजिम तो है ही, बात ही किसकी चल रही है, लाजिम की। तो पहली किस्म क्या हुई, बय्यिन बिमानल अखस, और दूसरी क्या हुई, बय्यिन बिमानल आम। और इनके मुकाबले में जो है वो गैर बय्यिन बिमानल अखस और गैर बय्यिन बिमानल आम है भाई। अच्छा हां, और लाजिम की मैंने आसान लफ्जों में आपको बताया था कि लाजिम जो है वो बय्यिन होगा या गैर बय्यिन। बय्यिन बय्यिन का माना वाज़ह, तो लाजिम बय्यिन वो है जो वाज़ह होगा, जो क्या होगा, वाज़ह होगा, यानी वहां किसी दलील की जरूरत नहीं। और लाजिम गैर बय्यिन वो है जो वाज़ह नहीं, यानी वहां लुजूम के लिए कोई ना कोई दलील चाहिए। तो यहां भी नक्शे में पहली किस्म क्या, बय्यिन बिल मानल अखस, ये किसके दर्जे में मैंने बताया, इंसान के दर्जे में। तो इसके सामने इसकी नकीज आई, तो इंसान की नकीज क्या है, ला इंसान, यानी ला ना कहें बल्कि गैर कहें, ताकि ये बात समझा सकूं मैं वाज़े तौर पर। इंसान की नकीज क्या है, गैर इंसान, यानी उसी इंसान पर गैर का लफ्ज आपने दाखिल कर दिया तो ये उसकी नकीज बन गई। तो यहां पर भी बय्यिन बिमानल अखस, इस पर गैर का लफ्ज दाखिल कर दें, गैर बय्यिन बिमानल अखस, ये उसकी नकीज बन गई। और दूसरी किस्म क्या थी, बय्यिन बिमानल आम, तो वहां पर भी वो किसके दर्जे में था, हैवान, और उसके सामने जो नकीज है वो किसके दर्जे में, ला हैवान, यूं कहें गैर हैवान, क्या है, गैर, तो हैवान की नकीज क्या, गैर हैवान। तो यहां पर भी बय्यिन बिमानल आम, इसकी नकीज कैसे बनाएंगे, इस पर क्या दाखिल कर देंगे, गैर, गैर बय्यिन बिमानल आम। तो नाम इसी तरह रहेगा क्योंकि नकीजें हैं आपस में, बय्यिन बिमानल अखस और गैर बय्यिन बिमानल अखस, इसी तरह बय्यिन बिमानल आम और गैर बय्यिन बिमानल आम, ये आपस में नकीजें हैं। नकीजें उस पर सिर्फ गैर या ला का लफ्ज दाखिल करते हैं। हां, बाकी तफसील मैंने अलग बतलाई थी कि जो गैर बय्यिन बिमानल अखस है, गैर बय्यिन बिमानल अखस है, ये हकीकत में आम है। नाम तो गैर बय्यिन बिमानल अखस है लेकिन हकीकत में ये क्या है, आम है। और नीचे वाला गैर बय्यिन बिमानल आम है, नाम तो उसका गैर बय्यिन बिमानल आम है लेकिन हकीकत में वो क्या है, अखस है। क्योंकि एक है इंसान और एक है ला इंसान, इंसान और ला इंसान, तो मैंने अब बतलाया था तीन दायरे फर्ज कर लें, एक में सिर्फ कौन है, इंसान, उनकी तादाद भी 50, दूसरे दायरे में बाकी सारे हैवानात उनकी तादाद भी 50, और तीसरे दायरे में दुनिया की तमाम चीजें आ गई फर्ज करें उनकी तादाद भी 50 है। तो मैंने कहा इंसान, ये कितने दायरों पर बोला जाएगा, एक दायरे पर, मालूम है इंसान के अफराद कितने, 50, और बाकी दो दायरे मालूम है वो गैर इंसान है, तो गैर इंसान के अफराद कितने, 100। तो यहां पर भी देखें, यहां पर भी देखें, ऊपर जो नक्शा बनवाया था, बय्यिन बिमानल अखस किसके दर्जे में, इंसान, और गैर बय्यिन बिमानल अखस ये किसके दर्जे में, गैर इंसान। तो पहला अगर अखस है तो दूसरा क्या है, आम है, अगरचे नाम उसका है गैर बय्यिन बिमानल अखस लेकिन वो क्या है, आम। और नीचे जो था बय्यिन बिमानल आम वो किसके दर्जे में था, हैवान के दर्जे में, और गैर बय्यिन बिमानल आम वो किसके दर्जे में, वो गैर हैवान के दर्जे में है। तो वो तीन दायरे थे, इसमें से हैवान कितने,
दो,
दो, दो। मालूम है हैवान है 100, तो तीसरा दायरा क्या हुआ, गैर हैवान का, तो हैवान के अफराद हैं 100 और गैर हैवान के कितने अफराद हैं 50, मालूम हुआ वो अखस है, वो क्या है। तो यहां पर भी ये जो बयन बिमानल आम, ये किसके दर्जे में, हैवान, तो ये आम है, तो इसकी जो नकीस है गैर बयन बिमानल आम यानी जो गैर हैवान के दर्जे में है वो क्या बन गई, वो अखस है। तो ये अखस और आम हैं, तो बाज शारहीन समझे कि ये चूंकि पहली किस्म आम है लिहाजा इसको कहना भी क्या चाहिए, आम, नाम भी आम होना चाहिए। नहीं नहीं, नाम हमने इसके आम और अखस होने की वजह से नहीं रखा, नाम हमने इसका नकीस होने की वजह से रखा है, और लाजिम गैर बयीन बिमानल अखस, तवज्जो है ऊपर जो है नकीस, लाजिम गैर बयीन बिमानल अखस, ये आम है लेकिन हमने इसको अखस क्यों कहा, क्योंकि ये नकीज है अखस की, वो बयीन बिमानल अखस था तो ये गैर बयीन बिमानल अखस है। आगे देखिए भाई, मतन देखिए, व इल्ला फअरजुन मुफारिकुन यदूमु औ यजूलु बिसुरअतिन औ बुतूइन। इन्होंने बतलाया था कि कुल्ली अरजी अगर वो मारूज से जुदा न हो सके, तवज्जो है, कुल्ली अरजी चाहे खासा हो चाहे अरजे आम, अगर वो अपने मारूज से जुदा न हो सके तो उसको कहते हैं लाजिम, और अगर जुदा हो सके तो उसका क्या नाम है, अरजे मुफारिक है। फिर याद रखें ये जो अरजे मुफारिक है या ये दाइम होगा या ये जाइल होगा, इसकी दो किस्में हैं, यह अरज मुफारिक या दाइम होगा यानी दाइमी हमेशा के लिए, या जाइल होगा यानी जाइल होने वाला जुदा होने वाला। तो अरज मुफारिक की कितनी किस्में, या दाइम या जाइल। दाइम का माना यह है कि एक सिफत मारूस से जुदा हो तो सकती है लेकिन होती नहीं, जैसे फलक आसमान, ये आसमान जो है कहते हैं ये हर वक्त हरकत कर रहे हैं, घूम रहे हैं गोल, भाई हकीकत में तो आसमान सात हैं जैसे कि कुरान हमें बतलाता है, लेकिन मनातिका और फलासफा यूनान वगैरह ये क्या कहते थे कि आसमान नौ हैं, कितने हैं, नौ हैं, और ये जो चांद है, ये सूरज है, ये अतारुद, जोहरा, मिर्रीख, मुश्तरी और जुहल। हमारे नजदीक तो आजकल आप जानते हैं कि सैयारे जो हैं नौ सैयारे थे, अब एक दो और भी दरियाफ्त हो चुके हैं, तो नौ या नौ से भी ज्यादा सैयारे हैं, अतारुद, जोहरा, जमीन, मिर्रीख, मुश्तरी, जोहल, यूरेनस, नीपचून और प्लूटो वगैरह, और एक दो और भी नए दरियाफ्त हुए हैं, तो ये नौ सैयारे हैं। और ये जो चांद, यह है सैयारचा, सूरज मरकज है, सूरज क्या है, मरकज है, और इस सूरज के गिर्द ये नौ सैयारे या 10 या 11 जो अब हो चुके हैं ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और ये जो चांद है ये सैयारचा है, ये जमीन के गिर्द घूम रहा है। जमीन खुद किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द, जैसे अतारुद, जोहरा, मिर्रीख, मुश्तरी, जोहल, यूरेनस, नीपचून और प्लूटो, ये सारे किसके गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द, ये सब सैयारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सैयारे। और चांद जो है वो सैयारचा है, वो जमीन के गिर्द घूमता है। इसी तरह ये जो मुश्तरी, जुहल, अतारुद वगैरह सब के अपने अपने चांद हैं जो इनके गिर्द घूमते हैं। सूरज जहन में आ रही है, सूरज मरकज में है और इसके इर्द गिर्द गोल दायरों में जमीन भी चक्कर लगा रही है, अतारुद भी, जोहरा भी, जमीन, मिर्रीख, मुश्तरी, जोहल, यूरेनस, नेपचून और प्लूटो सारे दायरे में घूम रहे हैं सूरज के गिर्द। जैसे आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांधें और अपने सर के इर्द गिर्द उसको हवा में घुमाएं तो देखो वो आपके सर के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसी तरह ये चीजें फजा में, ये सैयारे फजा में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और फिर इनमें से तकरीबन हर सैयारे के, किसी का एक चांद है, किसी के दो हैं, किसी के ज्यादा हैं, वो चांद वो सैयारों के गिर्द घूम रहे हैं। मसलन फर्ज करो वो पत्थर आपने घुमाया, आपने सर के इर्द गिर्द रस्सी से बांधा हुआ है, वो पत्थर आपके सर के इर्द गिर्द घूम रहा है और उस पत्थर के गिर्द भी एक चीज है जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो उसकी मिसाल चांद की तरह हुई। तो चांद क्या है, सैयारचा है, सैयारचा है। और मैंने लफ्ज जिक्र किया मिर्रीख। भाई याद रखो ये असल लफ्ज मिर्रीख है, अगरचे उर्दू में अब राइज क्या हो गया है, मरीख कहते हैं, मरीख पढ़ते हैं, असल लफ्ज ये मिर्रीख है। तो ये नौ सैयारे हैं, लेकिन कदीम फलकियात वाले वो इनमें से सिर्फ चंद सैयारों, कुल सात चीजों को मानते थे। सात चीजें क्या क्या? जमीन को वो मरकज बनाते थे। जदीद साइंस ने साबित किया कि जमीन मरकज नहीं है, बल्कि मरकज इनका सूरज है, लेकिन वो कहते थे कि जमीन मरकज में है और ये चीजें जो हैं ये जमीन के गिर्द घूम रही हैं। बल्कि वो यूं कहते थे कि जमीन के गिर्द नौ आसमान हैं। कितने? नौ आसमान हैं। यानी जैसे प्याज के ऊपर छिलके, हर तरफ से प्याज को छिलकों ने घेरा होता है, एक छिलका उतारें तो नीचे दूसरा छिलका होता है, दूसरा छिलका उतारें तो तीसरा छिलका, इसी तरह वो कहते हैं ये जमीन मरकज में है और इसके इर्द गिर्द नौ आसमान हैं और वो शफाफ शीशे की तरह शफाफ आसमान है, नौ आसमान भाई। और ये आसमान हर वक्त हरकत करते रहते हैं, घूमते रहते हैं गोल गोल, और इन्हीं आसमानों में एक आसमान के अंदर चांद जुड़ा हुआ है, चांद लगा हुआ है, दूसरे में मसलन अत्तारुद जुड़ा हुआ है, तीसरे में जोहरा है, चौथे में सूरज है और पांचवें में मुश्तरी है और उससे आगे क्या है, जुहल है। तो ये इसी तरह आसमान के अंदर ये सैयारे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, और ये आसमान चूंकि हरकत कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, इसीलिए हमें भी यूं लगता है कि ये हरकत कर रहे हैं। सूरज जो मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, ये इसलिए नहीं कि सूरज हरकत कर रहा है, बल्कि वह आसमान जिसके अंदर यह सूरज लगा हुआ है वह आसमान घूम रहा है। जब वो घूम रहा है तो उसके साथ साथ सूरज भी घूम रहा है, इसलिए हमें चांद भी मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करता हुआ दिखाई देता है और सूरज भी और बाकी सैयारे भी फजा में हमें इसी तरह हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो आसमान है जिसको वो फलक कहते हैं, क्या कहते हैं? फलक। तो ये वो कहते हैं नौ आसमान हैं, अगरचे हकीकत में कितने हैं? सात आसमान। इनमें ये सैयारे वगैरह जुड़े हुए हैं और आठवां आसमान जो है उसमें सितारे जुड़े हुए हैं। उसमें क्या है? जैसे एक छत हो और छत के अंदर आप बहुत सारे बल्ब लगा दें छत पर, भाई अंदर की जानिब से कमरे के अंदर, तो वो जैसे छत के अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हों, इसी तरह आठवें आसमान के अंदर ये सारे सितारे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं भाई। और इनके ऊपर फिर नौवां आसमान है जिसने इन सारे आसमानों को अपने घेरे में लिया हुआ है भाई। तो बहरहाल ये उनके अकायद हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब साइंस ने साबित किया है कि ये सूरज चांद जो हैं ये किसी चीज में जुड़े हुए नहीं, ये खाली फजा के अंदर खुली फजा में तैर रहे हैं, खुली फजा में तैर रहे हैं और ये सैयारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और ये जो बाकी जो सितारे हमें नजर आते हैं, लाखों करोड़ों बल अरबों खरबों की तादाद में जो सितारे हैं, ये भी खुली फजा में हैं। किसमें हैं? खुली फजा में हैं। और इनमें से ये सितारे, इतने बड़े बड़े सितारे हैं और इनमें से हर एक आग का गोला है, हर सितारा ये आग ही आग पर मुश्तमिल है, और चूंकि ये बहुत दूर है हमसे इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं भाई, बहुत छोटे हमें दिखाई देते हैं, वरना ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। आप फर्ज कर लें ये पूरी मस्जिद में, पूरी मस्जिद में आप रेत का एक जर्रा डालें लाकर, या ये पूरे मदरसे में रेत का एक जर्रा डालें, तो ये जो पूरी जमीन है जिसमें देखो कितने ममालिक हैं, कितने अरब हा अरब इंसान हैं, उस सितारे इतने बास बड़े बड़े हैं कि उन पर ये जमीन अगर रखी जाए तो यूं ही मालूम होगी जैसे कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा मैदान हो और उसके अंदर आप एक जर्रा डाल दें और वो आग के गोले हैं, तो वो जमीन को इस तरह जला देंगे कि पता भी नहीं चलेगा भाई। बात समझ में आ गई। बल्कि ये सितारे तो छोड़ें, कहकशाएं हैं भाई, एक एक कहकशा में अरबों सितारे होते हैं। कहकशा कहते हैं सितारों का गुच्छा, सितारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे गुच्छे की शक्ल में, एक एक कहकशा में लाखों करोड़ों सितारे होते हैं और वो सारे ही इसी तरह बड़े बड़े हैं भाई, और इस तरह की करोड़ों अरबों कहकशाएं मौजूद हैं भाई। जब इंसान फलकियात पढ़ता है तो उसको इस कायनात की अजमत और अल्लाह की कुदरतों पर नजर जाती है तो इंसान हैरान रह जाता है। इतनी वसी कायनात है, इतनी वसी कायनात कि जिसे लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता भाई। और वो कहते थे ये 9 आसमान हैं, हालांकि कुरान हमें बतलाता है कि ये 7 आसमान हैं। कितने हैं? 7 आसमान। और कहते हैं, उलमा लिखते हैं कि पहला आसमान हमसे जितना दूर है उतना ही मोटा भी है, खूब मोटा जिस्म है और उसने हर तरफ से घेरा हुआ है। फिर उससे आगे अगला आसमान उतना ही दूर है और फिर वो भी उतना ही मोटा है भाई। और ये जितने सितारे हैं ये सारे पहले आसमान से भी नीचे नीचे हैं। तो अभी पहला आसमान बड़ी से बड़ी दूरबीनें साइंसदानों ने बना ली, बड़े बड़े रॉकेट वो फजा में भेजते हैं दूरबीनें लगाकर, जो आगे फिर फजा में दूरबीनें चलती रहती हैं उनकी, और वहां से उनके सिग्नल वगैरह और तस्वीरें आती हैं जमीन पर। लेकिन अभी तक वो जितनी भी ताकतवर दूरबीन बनाते हैं, आगे मजीद मजीद नए सितारे नजर आते चले जाते हैं। मतलब अभी वो उस सितारों की हद को भी अबूर नहीं कर सके, तो पहला आसमान तो उनसे आगे है भाई। तो लिहाजा ये साइंसदान अभी तक आसमान को नहीं देख पाए, लेकिन न देखना आसमान के न होने को मुस्तलजिम नहीं है भाई। अभी तक आप आखिरी हद तक पहुंचे नहीं सितारों की, और पहला आसमान क्या है? सितारों के पीछे है, पीछे है भाई। और वाली साहब रहमहुल्ला जो फलकियात के बहुत बड़े माहिर थे और पूरी दुनिया में इल्म फलकियात के बड़े माहिरीन में से थे, उनके पास पूरी दुनिया से मुसलमानों के खतूत आते थे मुख्तलिफ किस्म के फलकियात से मुतालिका मसाइल पूछने के लिए, और इस फन में उनकी तसानीफ 30 से ज्यादा हैं भाई, 30 से ज्यादा। एक ही फन में इतनी किताबें लिखना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। आप एक फन पर एक किताब लिख लेंगे, 2 या 3 या 4 लिख लेंगे, लेकिन एक ही फन में इतनी सारी किताबें लिखना यह बतलाता है कि उनको इस इलम में कितनी महारत हासिल थी। और वो फरमाते थे कि मेरी तहकीक के मुताबिक जो पहला आसमान है वो 9.5 खरब नूरी साल के फासले पर है। हकीकत तो अल्लाह जानते हैं, लेकिन वो फरमाते थे मेरी तहकीक के मुताबिक पहला आसमान कितनी दूर है? 9.5 खरब नूरी साल। नूरी साल जानते हो? रोशनी, रोशनी, रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। रोशनी की रफ्तार इतनी तेज है, आप देखते हैं जैसे ही आप बल्ब जलाते हैं कमरा उसी लम्हे में रोशन हो जाता है, एक लम्हा भी नहीं लगता पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आप टॉर्च जैसे ही जलाते हैं फौरन दूर 50 गज दूर भी दीवार हो फौरन उसी लम्हे में उसके ऊपर रोशनी नजर आ जाती है। तो ये जो रोशनी है ये अभी तक जो चीजें साइंसदानों ने दरियाफ्त की इसमें सबसे तेज चीज रोशनी है। ये 1 सेकंड में, सेकंड की बात कर रहा हूं, 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर। अब तक जो तेज तरीन जहाज बनाए हैं सवारी के लिए उन्होंने, यहां से अमेरिका जाना होता है तो तकरीबन 22-24 घंटे लगते हैं। अमेरिका जमीन गोल है, पाकिस्तान एक तरफ है जमीन के, तो अमेरिका बिल्कुल दूसरी तरफ है भाई। यहां दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है तो यहां दिन होता है। एक गेंद पर दो तरफ आप नुक्ते लगा दें, दो तरफ नुक्ते लगा दें और उसको एक बल्ब के सामने रखें तो देखो एक वक्त में एक नुक्ता बल्ब के सामने आएगा ना, दूसरा नुक्ता तो दूसरी तरफ होगा। तो जो सामने होता है वहां क्या होती है? वहां दिन होता है, जो दूसरी तरफ होती है वहां रात। तो यहां दिन हो तो अमेरिका में रात होती है और अमेरिका में रात हो तो यहां दिन होता है। तो यहां से दूसरी तरफ जाने के लिए देखो कम अज कम 22-24 घंटे जहाज में सफर करना पड़ता है, और वहां से घूमकर फिर दोबारा पाकिस्तान आओ तो मालूम हुआ कोई कम अज कम 40 घंटे तो जरूर चाहिए। तो अब तक तेज तरीन जहाज जो लोगों ने, जो साइंसदानों ने बनाए हैं, वो तकरीबन 40 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। दुनिया गेंद की तरह एक तरफ से शुरू करें और पूरा घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाएं तो तकरीबन कितने घंटे? 40 घंटे चाहिए उनको। और रोशनी 1 सेकंड में जमीन के गिर्द 12 चक्कर लगा लेती है। यानी अगर ये घूम कर जाए, घूमती तो नहीं है लेकिन अगर घूम कर जाए तो इसकी रफ्तार इतनी है, एक सेकंड में आप सोचें तो सही, तेज तरीन जहाज कितने 40 घंटे में एक चक्कर लगा रहे हैं और ये एक सेकंड में 12 चक्कर लगा सकती है जमीन के, आप रफ्तार का अंदाजा लगाएं। तो ये रोशनी, ये जो आग ऊपर सैयारे और सितारे हैं, अब फासले नापने के लिए फिर किलोमीटरों का हिसाब खत्म हो जाता है, मीलों और किलोमीटरों की से बात बनती ही नहीं है। किलोमीटरों में चीज बताना चाहेंगे तो मसलन एक लिखा, एक के साथ 150 सिफर लगाओ, कितने 150 सिफर लगाओ या 100 सिफर लगाओ या चलो 50, एक के साथ 50 सिफर लगाओ भाई, एक के साथ 50 सिफर लगाएंगे वो तो सफा ही खत्म हो जाएगा भाई, एक सतर में आप लिख ही नहीं सकते उनको, सफा ही खत्म हो जाएगा। तो वहां फासले फिर किलोमीटरों में मापे ही नहीं जा सकते, फिर वो रोशनी की रफ्तार से फासले मापते हैं कि रोशनी इस सितारे से जमीन तक कितने सालों में पहुंचती है, कितने सालों में, कितने सालों में। तो बास सितारे हैं उनकी रोशनी हमें 50,000 साल में पहुंचती है। ये जो कुतुबी सितारा है, कुतुबी तारा आपने सुना होगा, शुमाल की तरफ है और इसके जरिए पुराने लोग सिमत का पता लगाते थे कि शुमाल मशरिक जुनूब किस तरफ है, रात के वक्त अगर सफर करना पड़ता तो ये जो कुतुबी तारा है कहते हैं इसकी रोशनी हमें 50,000 साल में पहुंचती है। अंदाजा लगाओ हर हर सेकंड में रोशनी 3,00,000 किलोमीटर कर रही है और इसी रफ्तार से वो 50,000 साल तक चलती रही फिर जमीन पर पहुंची। आपको अगर एक रॉकेट में बिठाया जाए और उस रॉकेट को रोशनी की रफ्तार से चलाएं, कितनी
रोशनी की रफ्तार,
हर सेकंड में कितना 3,00,000, तो 50,000 साल बाद ये रॉकेट पहुंचेगा कुतुबी सितारे पर। और आप तो सब कुछ मौजूद भी हुआ, कोई हादसा भी ना हुआ, तमाम असबाब भी हुए, तो 50 साल जिंदा रहेंगे, 60 साल जिंदा रहेंगे, 70 साल, और रोशनी ये कितने में पहुंचती है 50। तो ये बास सितारे ऐसे उनकी करोड़ों साल में रोशनी पहुंचती है, इतनी वसी कायनात है, इंसान हैरान होता है। चलिए ये तो वैसे बात आ गई, आइए भाई सबक की तरफ। तो ये जो फलक है, ये जो आसमान है, ये हर वक्त घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं भाई। ये फलासफा का नजरिया था भाई, ये आसमान क्या है, हर वक्त चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो हरकत है, ये आसमान जो है उसकी हकीकत में तो दाखिल नहीं, उसकी सिफत है, क्या है, उसकी सिफत है, और ये हरकत इससे जुदा नहीं होती, जुदा हो सकती है क्योंकि इसकी हकीकत में दाखिल नहीं। और आसमान भी एक जिस्म है और हर जिस्म जैसे वो काबिले हरकत होता है वो काबिले सुकून भी होता है, हर जिस्म काबिले, हर जिस्म को हरकत दी जा सकती है, वो जैसे वो काबिले हरकत है इसी तरह वो काबिले सुकून भी है, उसमें सुकून भी आ सकता है। तो ये जो आसमान है ये घूम तो हर वक्त रहे हैं, इनमें सुकून आ सकता है लेकिन सुकून आता नहीं। तो ये जो आरस है, इनकी हरकत है, ये इनके साथ दाइम है, क्या है, दाइम है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कुल्ली आरजी की। तो ये हरकत उनकी हकीकत में दाखिल है या उनका एक वसफ है, वसफ है, और उनसे जुदा हो सकता है या नहीं, जुदा हो सकता है, इसके बगैर भी आसमान पाए जा सकते हैं लेकिन होता नहीं। तो ये मिसाल हुई आरज मुफारिक दाइम की, किसकी, दाइम की। तो आरज मुफारिक कितनी किस्म पर मैंने बताया, दो किस्म, या दाइम होगा या जायद। दाइम का माना यह है कि एक चीज से जुदा हो तो सकता है लेकिन होता नहीं, हमेशा उसी के साथ रहता है, इम्कान है जुदा होने का लेकिन होता नहीं, तो इम्कान भी काफी है भाई, जुदा तो हो सकता है। तो ये किसकी किस्म हुई, आरज मुफारिक की, आरज मुफारिक की। और बाज़ वो आरज मुफारिक हैं जो जुदा हो जाते हैं, उनका नाम है जाइल। फिर ये जाइल जो जुदा होने वाले हैं ये फिर दो किस्म पर हैं, एक है सरी उस जवाल और एक है बती उस जवाल। सरी उस जवाल वो वसफ जो जल्दी जुदा हो जाता है, और एक है बती उस जवाल, बती का माना सुस्त भाई, आहिस्ता, बती उस जवाल जो बड़ी आहिस्ता जुदा होता है यानी बड़ी देर से जुदा होता है। सरी उस जवाल की मिसाल, सरी उस जवाल की मिसाल जैसे जैसे जाहिक बिलफेल, एक शख्स हंसता है फिर वो हंसता ही रहता है या चंद लम्हों में खामोश हो जाता है, چند لمحوں میں وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ زاہق بالفعل جو ہے, یہ زاہق بالفعل یہ ایسی صفت ہے جو سریع الزوال ہے, جو کیا ہے؟ سریع الزوال ہے. یا جیسے کوئی شخص شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, تو یہ چہرے کی سرخی یہ صفت ہے, یہ عرض ہے, اور عرض مفارق ہے. اور عرض مفارق یہ دائم ہے یا زائل ہے؟ زائل. دائمی اس کے ساتھ رہتی ہے, جدا ہو جاتی ہے؟ اور پھر جدا جلدی ہوتی ہے یا دیر سے؟ جلدی ہو جاتی ہے. تو یہ سریع الزوال ہے. یا جیسے کسی شخص, کوئی شخص ڈر جاتا ہے تو چہرہ اس کا زرد پڑ جاتا ہے, یہ زردی بھی کیا ہے؟ سریع الزوال ہے. جبکہ کچھ صفات ہوتی ہیں وہ بطیء الزوال ہوتی ہیں, وہ بڑی دیر سے جدا ہوتی ہیں, جیسے جوانی. جوانی انسان کی کیا ہے؟ ایک صفت ہے, ایک حالت ہے, جب اس کے تمام قوتیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں, اور پھر یہ جوانی فوراً ختم نہیں ہوتی, کئی سال تک یہ جوانی رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہوتی ہے. تو یہ جوانی کس کی مثال ہے؟ بطیء الزوال کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے. دیکھیے بھائی, ترجمہ دیکھ لیں متن میں. وَإِلَّا فَعَرَضٌ مُفَارِقٌ, ورنہ وہ پھر عرض مفارق ہے, یعنی اگر وہ عرض اپنے معروض سے جدا ہونا اس کا ممکن ہو. اگر عرض کا اپنے معروض سے جدا ہونا پیچھے آیا تھا, اگر عرض اپنے معروض سے جدا نہ ہو سکے تو وہ لازم ہے, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جدا ہونا ممکن ہو تو پھر عرض ان مفارق, ان یہ کیا ہے؟ عرض مفارق ہے. یا دوم, پھر یہ عرض مفارق یا تو دائمی ہوگی, او یا زول یا زائل ہوگی, بے سرعتن او بتو ان, جلدی سے زائل ہوگی, او بتو ان یا دیر سے بھائی, یا دیر سے بھائی. اب آئیے شرح پر. قوله وكل منهما اي كل واحد من الخاصة والعرض العام. وكل منهما اي كل واحد, جی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل کا لفظ ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے. کل کا معنی ہے سارا. تو کس چیز کا سارا؟ کیا سارے قلم مراد ہیں, یا ساری کتابیں مراد ہیں, یا سارے طلبہ مراد ہیں؟ تو کل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضافلے. لیکن کبھی کبھار کل کے مضافلے کو حذف کر دیتے ہیں اور اس پر تنوین لے آتے ہیں. تو یہ کلو اور بازو پر جو تنوین آئے وہ مضافلے کا عوض ہوتی ہے. تو متن میں بھی کیا آیا تھا؟ وَكُلُّ مِّنْهُمَا, کل پر تنوین آئی تھی, تو یہ تنوین کس کا عوض ہے؟ مضافلے کا. چنانچہ شرح میں یہی بتلا رہے ہیں, اے کل واحد, تنوین کی جگہ کیا لے آئے؟ واحد کا, ہر ایک. اور متن میں کیا آیا تھا؟ کل من ہوما, ہما ضمیر کا مرجع بھی شرح میں بتلا دیا, ای من الخاصتی والعرض العام. تو کہتے ہیں قوله وکل من ہوما ای کل واحد من الخاصتی والعرض العام, یعنی ہر ایک جو ہے خاصہ اور عرض عام میں سے. وبالجملتی, اور حاصل ایک کلام یہ کہ الکلی الذی ہوا عرضی لافرادہ, کہ وہ کلی جو عرضی ہوتی ہے اپنے افراد کے لیے, یعنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عرضی ہوتی ہے. اما لازم او مفارق, یا تو وہ لازم ہوگی یا مفارق ہوگی. بھئی لازم اور مفارق کیوں کہتے ہیں؟ اس لا یخلو, اس لیے کیونکہ یہ عرضی یہ خالی نہیں ہے, اس میں دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی. اما یستحیل انفکاکہ عن معروضہ او لا, یا تو محال ہوگا اس کا جدا ہونا اپنے معروض سے, او لا, یا محال نہیں ہوگا. توجہ ہے, یا تو صفت اپنے معروض سے جدا ہو سکے گی یا جدا نہیں ہو سکے گی. اگر جدا ہونا محال ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ لازم. اور اگر جدا ہونا محال نہ ہو, جدا ہو سکتی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفارق. اب دیکھو دو چیزیں ذکر کی بھائی, اما لازم او مفارق. پہلے کس کو ذکر کیا؟ لازم. دوسرے نمبر پر مفارق. آگے جب تفصیل بیان کر رہے ہیں وہاں بھی دو چیزیں ہیں. اس لا یخلو, اس لیے کیونکہ وہ عرض وہ خالی نہیں ہے, یعنی دو باتوں میں سے ایک اس میں ضرور ہوگی. اما یستحیل انفکاکہ عن معروضہ, یا تو محال ہوگا اس کا جدا ہونا کس سے؟ اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا, اولا, یا محال نہیں ہوگا. توجہ ہے. تو فل اول ہو الاول, والثانی ہو الثانی. تو اول اول ہے اور ثانی ثانی ہے. اول کون سی؟ یہ جو بعد میں دو چیزیں ذکر کی, जुदा होना महाल होगा या महाल नहीं होगा? महाल होगा पहली सूरत, महाल नहीं होगा दूसरी। जुदा होना महाल हो, ये जो पहली सूरत है, फल अव्वलु, ये जो अव्वल है, हुवल अव्वलु, ये अव्वल है, यानी वो जो लाजिम और मुफारिक में कौन था पहले?
लाजिम।
तो ये जो अव्वल जिसका जुदा होना महाल है वो लाजिम है। वसानी, ये जो दूसरा है यानी जो औला, ये जो औला आया था जिसका जुदा होना महाल नहीं, ये दूसरा जो है हुआ सानी, ये वो दूसरा है। कौन सा दूसरा?
मुफारिक
है। इबारत समझ में आ गई? सुम लाजिम यनकसिमु भी तकसीम ही नहीं, फिर ये जो लाजिम है ये तकसीम होता है दो तकसीमों के साथ। आगे भाई, लाजिम की दो तकसीमें करेंगे, एक क्या? एक तकसीम है मलजूम के एतबार से और एक तकसीम थी लुजूम के एतबार से। मलजूम के एतबार से कितनी किस्में? तीन, लाजिम माहियत, लाजिम वजूद खारजी और लाजिम वजूद जहनी। और लुजूम के एतबार से दो किस्में थी, बयीन और गैर बयीन, वही बयान कर रहे हैं। कहते हैं सुम लाजिम यन कसिम भी तकसीम ही नहीं, फिर ये जो लाजिम है ये तकसीम होता है भी तकसीम नहीं दो तकसीमों के साथ, यानी इसमें दो तकसीमें होती हैं। आहदुहुमा, उनमें से एक यह है कि अन्ना लाजिम शई मा लाजिम लहू, कि किसी शय का जो लाजिम होता है या तो वह लाजिम होगा बिन नजरी इला नफ्सिल माहियति, नजर करते हुए नफ्स माहियत की तरफ, माकत इन नजरी आन खसूसी वजूदिहा फिल खारिजी औ फिल ज़हनी। या तो एक शय इधर देखिए, या तो एक शय लाजिम होगी एक माहियत के साथ कतई नजर वजूद खारजी और कतई नजर वजूद जहनी। कभी तो एक शय लाजिम होती है सिर्फ वजूद खारजी के एतबार से, कभी एक शय लाजिम होती है सिर्फ वजूद जहनी के एतबार से, और कभी एक शय माहियत के साथ लाजिम होती है कतई नजर वजूद खारजी और वजूद जहनी के। वही बयान कर रहे हैं कि इम्मा लाजिम लहू, के किसी शय का जो लाजिम है या तो उसके साथ लाजिम होगा बिन नजर इला नफ्सिल माहियती, नजर करते हुए नफ्स माहियत और हकीकत की तरफ, माकत इन नजरी कतई नजर करते हुए अन खसूसी वजूदिहा उसका जो खास वजूद है फिल खारिजी औ फिल ज़हनी, खारिज या ज़हन में, उससे कतई नजर, उससे कतई नजर नफ्स माहियत के साथ खास होगी। वज़ालिक भी अन यकून हाज़ा शयू, और वो इस तौर पर कि ये वाली चीज जो है बिहाइसु कुल्लमा, किस तौर पर होगी? एक लाजिम जो है वो एक शय की माहियत के साथ लाजिम होगा, कतई नजर किसके? वजूद जहनी या वजूद खारिज, यानी खारिज के एतबार से सिर्फ नहीं होगी या सिर्फ जहन के एतबार से नहीं होगी, बल्कि उस माहियत के साथ लाजिम होगी। वो जहां, वो माहियत जहां भी पाई जाए, चाहे खारिज में चाहे जहन में, उसके साथ वो सिफत जरूर होगी, वो लाजिम जरूर होगा। वज़ालिका, और वो इस तौर पर, बि अन यकून हादा शय, बाई सूरत की ये वाली चीज जो है, बिहैसु कुल्लमा तहक्कका फिल ज़हनी औ फिल खारिजी, कि ये चीज जब भी पाई जाए जहन में या खारिज में, कान हादा लाजिमु साबितन लहू, तो ये वाला लाजिम भी उसके लिए साबित होगा। वह इम्मा लाजिम लहू बिन नजर इला वजूद हिल खारिजी, या वो जो लाजिम होगा वो एक चीज के साथ लाजिम होगा नजर करते हुए उसके वजूद खारिजी की तरफ, अविज जहनी, या नजर करते हुए उसके वजूद जहनी की तरफ। फहाज अल किस्म बिल हकीकती किस्मानी हासिलानी, तो ये वाली किस्म जो है हकीकत में दो किस्में हैं हासिल होने वाली। भाई आपकी किताबों में किस्मानी हासिलानी, हासिलानी सिफत है जी, हासिलानी नहीं होना चाहिए भाई, मेरी किताब में है लेकिन यह नहीं होना चाहिए। फहाज अल किस्म बिल हकीकती किस्मानी, अच्छा भाई मतन में आओ, मतन में, मतन में क्या था? वकुल मिन्हुमा इन इम्तना अन फिकाकुहु अन शैई फलाजिमुन बिन नजरी इलल माहियती अविल वजूदी, इलल माहियति अविल वजूदी। कितनी किस्में बनाई? दो, दो, बजाहिर लग रहा है दो किस्में बनाई, लेकिन तमाम मनातिका यहां कितनी किस्में बनाते हैं? तीन। मैंने जवाब भी बतलाया था, क्या जवाब था? कि ये जो वजूद कहा, इस वजूद से खास वजूद मुराद है, और वो कौन सा? वजूद खारजी या वजूद जहनी, खास वजूद मुराद है। बात समझ में आ गई? और क्यों खास वजूद क्यों मुराद?
मुतलक नहीं, मुतलक वजूद नहीं, वरना तो मुतलकन तीन वजूद हैं, वजूद खारजी, वजूद जहनी और वजूद नफसुल अमरी, तो वो तीनों को शामिल नहीं है बल्कि खास वजूद है, खास वजूद, और वो कितनी किस्म है, वजूद खारजी और वजूद जहनी। तो ये वाली जो किस्म है, तवज्जो है, ये जो मतन में आया बिन नजर इलल माहियती, नजर करते हुए माहियत की तरफ, ये एक किस्म हो गई। अविल वजूद या नजर करते हुए किसकी तरफ, वजूद की तरफ, ये दरअसल कितनी किस्में हैं, दो हैं, वजूद जहनी भी और वजूद खारजी भी, यही बयान कर रहे हैं। फहाजल किस्म, ये जो दूसरी किस्म है, ये जो अविल वजूद कहा, बिल हकीकत किस्मान, ये हकीकत में दो किस्में हैं। अच्छा, मैंने एक और बात कही कि यह अल वजूद पर अलिफ लाम आया, मालूम हुआ खास वजूद मुराद है, और कौन सा वजूद, वजूद खारजी और वजूद जहनी, वजूद नफ्सिल अमरी मुराद नहीं। तो ये अलिफ लाम इसके जरिए इशारा है किसकी तरफ, खास वजूद की तरफ। चुनाचे इसीलिए देखो शरा में आया था, ये अभी दो सत्रें पहले आया, मा कतई नजरे अन खुसूस वजूदिहा फिल खारिजी औ फिल जहनी। तवज्जो है, दो सत्रें पहले शरा के अंदर, शरा में दो सत्रें पहले, मा कतई नजरी अन खुसूसी वजूदिहा फिल खारिजी औ फिल जहनी। देखा, खुसूसी वजूदिहा, वजूद से पहले खुसूस का लफ्ज ले आए, वजूद से पहले खुसूस, इसी बात की तरफ इशारा करने के लिए कि मतन में जो अल वजूद आया था वो हर वजूद नहीं मुराद, वो खास वजूद मुराद है, इसीलिए कहा अन खुसूस वजूदिहा, उसका जो खास वजूद है, फिल खारिजी औ फिल जहनी, खारिज में या जहन में, यानी वो मुराद है, वजूद नफ्सुल अमरी मुराद नहीं है। आगे देखिए शरा में कहते हैं, फअक्सामुल लाजिमी बिहाजत तकसीमी सलासतुन, फअक्सामुल लाजिमी, बस लाजिम की जो अकसाम है, बिहाजत तकसीमी, इस तकसीम की वजह से, सलासतुन, वो कितनी है, तीन है, लाजिमुल माहियती, एक लाजिमुल माहियत है, कजौजियतिल अरबाती, जैसे चार का जौज होना, चार का जुफ्त होना, व लाजिमुल वजूदिल खारिजी, दूसरी किसाम लाजिमुल वजूदिल खारिजी है, का इहराक नारी, जैसे आग का जलाना, अहरक युहरिक इहराक का माना होता है जलाना, का इहराक नारी, जैसे कि आग का जलाना, व लाजिमुल वजूद जहनी, और तीसरी किस्म है लाजिम वजूद जहनी, का कौनी हकीकतिल इंसानी कुल्लियतन, जैसे इंसानी हकीकत का कुल्ली होना, इंसान क्या है, कुल्ली है, देखो इंसान का कुल्ली होना और जैद का जुजी होना, यह सिर्फ जहन में है, खारिज में नहीं, तो यह क्या है, लाजिम वजूद जहनी है, यानी जहन में जैसे ही इंसान आता है साथ ही कुल्ली होना एक सिफत भी आ जाती है, तो यह कुल्ली होना यह उसकी सिफत है, आरज है, और यह लाजिम है, उससे जुदा नहीं होती, तो यह कौन सी लाजिम है, लाजिम वजूद जहनी। फहाद अल किस्म युसम्मा माकूल अंसानियन ऐजन, तो ये जो किस्म है, तीसरी किस्म, कौन सी तीसरी किस्म, लाजिम वजूद जहनी, युसम्मा माकूल अंसानियन ऐजन, इसको माकूल सानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माकूल सानी, माकूल है यानी अकल में आती है, और सानी है यानी दूसरे दर्जे में आती है, पहले मारूज आता है फिर यह कुल्ली या जुजी होना आता है, पहले इंसान जहन में आता है और उसके बाद उसका कुल्ली होना, तो ये कुल्ली होना दूसरे दर्जे में आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माकूले सानी कहते हैं। असानी, दूसरी तकसीम किसकी, लाजिम की, पीछे बताया था ना कि सुम्मल लाजिमो यन कसिमो भी तकसीमैनी, कि लाजिम तकसीम होता है कितनी तकसीमों के साथ, दो के साथ, पहली के मुताबिक उसकी तीन किस्में, अब दूसरी जो बय्यन और गैर बय्यन है उसको बयान करने लगे, कहते हैं वस्सानी, और दूसरी तकसीम जो है लाजिम की, कि अन्न लाजिम इम्मा बय्यन औ गैर बय्यन, कि लाजिम या तो बय्यन होगा या गैर बय्यन होगा, वल बय्यन लहू मानयानी, और बय्यन के दो माना है, अहदुहुमा उनमें से एक जो है वो ये है कि अल्लज़ी यल्ज़मु तसव्वुरुहु मिन तसव्वुरिल मलज़ूमी, कि लाजिम हो उसका तसव्वुर मिन तसव्वुरिल मलज़ूमी, किसे, मलज़ूम के तसव्वुर से लाजिम का भी तसव्वुर आ जाए, कमा यल्ज़मु तसव्वुरुल बसरी मिन तसव्वुरिल आमा, जैसे कमा यल्ज़मु तसव्वुरुल बसरी मिन तसव्वुरिल आमा,
भाई एक है आमा, आमा का माना है नाबीना होना, अंधा होना। आमा का क्या माना? अंधा होना। आमा अंधे को कहते हैं और आमा अंधा होना। और बसर, बसर का माना है बीना होना, यानी देखने वाला होना, जिसको दिखाई दे। तो बसर बीना होना और आमा नाबीना होना। याद रखो ये जो नाबीना होना है इसके साथ बसर का तसव्वुर लाजिम है। जैसे ही आप अंधे होने का तसव्वुर करते हैं साथ ही बीना होने का तसव्वुर भी आ जाता है। आपने तसव्वुर किसका किया? नाबीना होने का, लेकिन साथ ही बीना होने का भी तसव्वुर आ गया। क्योंकि नाबीना होना इसमें नफी है किस चीज की? बीना होने की। तो बीना होना पहले आएगा फिर उसकी नफी होगी ना, बगैर बीना होने के नफी उसकी हो सकती है नहीं? तो नाबीना किसे कहते हैं? जिसको दिखाई ना दे। तो पहले दिखाई देने का तसव्वुर जहन में आएगा और फिर उसकी नफी होगी। बात समझ में आ गई? नाबीना किसे कहते हैं? जो बीना ना हो। देखा, बीना होने की नफी हो गई। तो नाबीना उसी को कहेंगे जिसमें बीना होने की सलाहियत थी। कोई इंसान है, अब उसको अगर दिखाई नहीं देता तो आप उसको नाबीना कहेंगे। कोई हैवान है, अब उसको दिखाई नहीं देता तो अब आप उसको नाबीना कहेंगे। क्या ये दीवार है, इसको कोई नाबीना कहेगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो देखने की सलाहियत ही नहीं है। तो नाबीना कहते ही उसको है जिसमें देखने की सलाहियत थी, लेकिन अब किसी मरज या आरिस की वजह से अब क्या हो चुकी? खत्म हो गई। तो नाबीना जब कहेंगे तो बीना होने का तसव्वुर पहले आएगा कि इसमें किसकी सलाहियत थी? बीनाई की सलाहियत थी, लेकिन अब क्या हो चुकी? खत्म हो चुकी। चुनांचे दीवार में चूंकि सलाहियत ही नहीं बीना होने की, लिहाजा इसको कोई नाबीना भी नहीं कहता। तो नाबीना होने के साथ किसका तसव्वुर लाजिम? बीना होने का तसव्वुर लाजिम है। इन्होंने क्या कहा था? मलजूम का तसव्वुर करो तो लाजिम का भी तसव्वुर आ जाए। आप जैसे ही नाबीना होने का तसव्वुर करते हैं बीना होने का भी तसव्वुर आ जाता है। यह माना है कमा यलजम तसव्वुरुल बसरी, जैसे कि बसर यानी बीना होने का तसव्वुर लाजिम है। मीन तसव्वुरिल आमा, किसके तसव्वुर से जी? किसके तसव्वुर से? आमा यानी अंधे होने के तसव्वुर से। फहादा मा युकालु लहु बय्यिनुन बिल मानल अखसी, बस ये वो लाजिम है। युकालु लहु बय्यिनुन बिल मानल अखसी, जिसको बय्यिन बिल मानल अखस कहते हैं। वहीन इजिन, और इस वक्त, और यानी जब आपने बय्यिन बिल मानल अखस किसको कहा कि मलजूम के तसव्वुर से किसका तसव्वुर आ जाए? लाजिम। तो इसकी नकीस क्या बनेगी कि मलजूम के तसव्वुर से लाजिम का तसव्वुर जहन में ना आए, वो गैर बय्यिन होगा। वही बयान कर रहे हैं, वहीन इज़िन, और इस वक्त, यानी जब आप बय्यिन का ये माना कर लें तो फगैरुल बय्यिन, तो फिर गैर बय्यिन जो है वह लाजिमुल लजी ला यलजमु तसव्वुरुहु मिन तसव्वुरिल मलजूमी, तो गैर बय्यिन वो लाजिम है कि उसका तसव्वुर लाजिम ना हो मलजूम के तसव्वुर से। कल किताबती बिलकुवत लिल इंसानी, जैसे किताबत बिलकुवा है किसके लिए? इंसान के लिए। भाई देखो, हर इंसान में अल्लाह ने किताबत की सलाहियत रखी है। हर इंसान कातिब है बिलकुवा, कातिब है बिलकुवा, कातिब है बिलकुवा। लेकिन क्या इंसान का तसव्वुर करते ही कातिब होने का तसव्वुर साथ आता है? नहीं। तो कातिब बिलकुवा ये इंसान के साथ लाजिम है, लेकिन मलजूम सिर्फ इंसान का तसव्वुर करो तो साथ ही कातिब बिलकुवा का तसव्वुर नहीं आता। मालूम हुआ ये क्या है? ये कातिब बिलकुवा ये लाजिम है, गैर बय्यिन बिल मानल अखस है। भाई कल किताबती बिलकुवती लिल इंसानी, जैसे किताबत बिलकुवा है इंसान के लिए। वसानी मिन मानल बय्यिनी, और बय्यिन का जो दूसरा माना है, हुवल्लज़ी यलज़मु मिन तसव्वुरिही मा तसव्वुरिल मलज़ूमी वन निस्बती बैनहुमल जज़्मु बिल लुज़ूमी, और वो ये है कि यलज़मु मिन तसव्वुरिही, कि लाजिम का तसव्वुर करने से मा तसव्वुरिल मलज़ूमी, और साथ किसका तसव्वुर कर लें? मलजूम का तसव्वुर कर लें। वन निस्बती बैनहुमा, और तीसरी किस चीज का तसव्वुर कर लें? इन दोनों के दरमियान निस्बत का तसव्वुर कर लें। तो इस सूरत में लाजिम है क्या? इसके साथ लाजिम है अलजज्म बिल लुजूमी, लुजूम का यकीन होना। आप किसका तसव्वुर कर लें? लाजिम का भी और मलजूम का भी और इन दोनों के दरमियान निस्बत का भी, तो फिर इस सूरत में जहन को यकीन हो जाता है कि ये सिफत इस मारूस के साथ लाजिम है, इससे कभी भी जुदा नहीं हो सकती। ये माना है कि वसानी मिन मानल बयीनी हुवल लजी यलज़मु मिन तसव्वुरिहि मा तसव्वुरिल मलज़ूमि वन निस्बति बैनहुमा। सानी जो है बयीन के माना में से वो है कि उस लाजिम के तसव्वुर के साथ मलजूम का तसव्वुर हो और उन दोनों के दरमियान निस्बत का तसव्वुर हो, तो उस सूरत में लाजिम होता है अलजज्म बिल लुजूमी, दोनों में लुजूम का यकीन आ जाता है। कजौजियतिल अरबाती, जैसे कि चार का जुफ्त होना। फइन अल अक्ल बाद तसव्वुरिल अरबाती व जौजियति व निस्बति जौजियति, इसलिए क्योंकि अकल जो है बाद उसके जब वो तसव्वुर कर ले चार का भी व जौजियति और जुफ्त होने का भी व निस्बति जौजियति इलैहा और फिर इस चार की तरफ जौजियत की निस्बत का भी तसव्वुर कर ले कि ये चार इसके जोड़े जोड़े बनते हैं या नहीं जोड़े बनते, फिर यहकुमु उसके बाद अकल फैसला कर देती है जज़मन कतई तौर पर कि भी अन्न ज़ौजियत लाजिमतुन लहा कि ये ज़ौजियत लाजिम है अरबा के साथ चार के साथ, इससे जुदा नहीं हो सकती। वज़ालिका युकालु लहुल बय्यिनु बिल मानल आमी और इसको बय्यिन बिल मानल आम कहते हैं। वहीन इज़िन और उस वक्त जो है फ़ग़ैरुल बय्यिनि हुवल लाज़िमुल लज़ी, बयान की दूसरी तारीफ क्या की कि तीनों चीजों का तसव्वुर कर लें तो उसके बाद लुजूम का यकीन हो जाए, तो इसी के मुकाबिल गैर बयान बन जाएगा कि तीनों का तसव्वुर कर लें तो लुजूम का यकीन ना हो। बात समझ में आ। वहीन इज़िन फ़ग़ैरुल बय्यिनि और उस वक्त जो गैर बय्यिन है वह लाजिमुल लज़ी, वो लाजिम है कि ला यल्ज़मु मिन तसव्वुरिही मा तसव्वुरिल मलज़ूमि वन निस्बति बैनहुमा, कि लाजिम नहीं है उसका तसव्वुर कर लें यानी लाजिम का मा तसव्वुरिल मलज़ूमी साथ मलज़ूम के तसव्वुर के व निस्बति बैनहुमा और साथ उन दोनों के दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर कर लें, तो इसके साथ लाजिम नहीं है अल जज़्मु बिल लुज़ूम, लुज़ूम का यकीन, लुज़ूम का यकीन फिर भी नहीं होता। मालूम हुआ यह क्या है, लाजिम गैर बयीन बिल मानल आम है। कल हुदूस लिल आलमी, जैसे आलम और जहान के लिए हादिस होना। कल हुदूस लिल आलमी, जैसे आलम के लिए हादिस होना। आलम के लिए देखो, आलम है मारूस और हादिस होना इसकी सिफत है। हादिस होने का क्या माना, एक है कदीम एक है हादिस। कदीम किसे कहते हैं, जिस पर कभी आदम न आया हो, और कदीम सिर्फ अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात हैं। और हादिस किसे कहते हैं कि एक वक्त था इस चीज का वजूद नहीं था, तो बाकी तमाम कायनात के आलम की सारी चीजें क्या हैं, हादिस हैं। तो ये आलम भी क्या हुआ, हादिस हुआ। अब आप आलम का भी तसव्वुर करें, ये पूरा आलम, और इसके साथ हादिस होने का भी तसव्वुर करें, और फिर इन दोनों में निस्बत भी देखें कि हादिस होना इसके साथ लाजिम है या लाजिम नहीं, फिर भी जहन को हुदूस का यकीन नहीं होता, बल्कि मजीद दलाइल देना पड़ते हैं जी। बात समझ में आ गई, दलाइल देना पड़ते हैं। तो मालूम हुआ यह आलम के लिए हादिस होना लाजिम बय्यिन नहीं है, वरना तो यह दलील का मोहताज ना होता, बल्कि यह क्या है, लाजिम गैर बय्यिन है, जिसके लिए बाकायदा दलील देना पड़ती है कि आलम हादिस है, हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। यह माना है कल हुदूस लिल आलमी, जैसे कि आलम के लिए हादिस होना। फहाद तकसीम उस्सानी, अच्छा अब यहां से यह बात बयान करने लगे कि मतन में तो सिर्फ इतना आया था बय्यिनुन, मतन पे जरा नजर रखें, बय्यिनुन और आगे यल्ज़मु तसव्वुरुहु मिन तसव्वुरिल मलज़ूमी औ मिन तसव्वुरिहिम अलजज़्मु बिल्लुज़ूम, ये बय्यिन के दो माना बयान कर दिए। किसके, बय्यिन के दो माना बयान कर दिए, और आगे कहा वगैरु बय्यिनिन बिखिलाफिही, और गैर बय्यिन इसके बरखिलाफ है। मतन से बज़ाहिर यही लगता है कि बय्यिन के तो दो माना हैं और गैर बय्यिन का एक ही माना है जो इसके क्या होगा, बर खिलाफ होगा। बज़ाहिर यूं लगता है, और यूं लगता है ये एक ही तकसीम हो रही है, लेकिन
कहते हैं ये दरअसल एक तकसीम नहीं है, ये दो तकसीमें हैं, हकीकत में दो तकसीमें हैं, बय्यिन दो किस्म का है तो गैर बय्यिन भी दो किस्म का है। एक बय्यिन बिमानल अखस है तो उसकी नकीस क्या है, गैर बय्यिन बिमानल अखस, और एक बय्यिन बिमानल आम है तो उसकी नकीस क्या है, गैर बय्यिन बिमानल आम है। तो एक तकसीम है या दरअसल दो तकसीमें हैं, दो तकसीमें हैं, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं फहाद तकसीम उस्सानी बिल हकीकती तकसीमानी, ये जो दूसरी तकसीम है बयीन और गैर बयीन वाली, ये हकीकत में दो तकसीमें हैं। इल्ला अन्नल किस्मैन अल हासिलैन अला कुल्ली तकदीरिन, मगर यह कि वो जो दो किस्में हासिल होती हैं हर तकदीर पर, इन नमा युसम्मयानी बिल बयीन व गैर बयीनी, उन दोनों को बयीन और गैर बयीन कहते हैं, नाम दोनों के एक जैसे हैं। पहली तकसीम के मुताबिक भी एक किस्म बय्यिन तो दूसरी गैर बय्यिन, दूसरी तकसीम के मुताबिक भी एक का नाम बय्यिन तो दूसरी का नाम गैर बय्यिन है। अलबत्ता फिर इनके दरमियान फर्क करने के लिए एक के साथ बिमानल अखस की कैद लगाते हैं और दूसरी के साथ बय्यिन बिमानल आम, लेकिन नाम दोनों के एक ही हैं। दोनों तकसीमों की सूरत में एक का नाम बय्यिन है तो दूसरी का नाम गैर बय्यिन है, यह माना है। इल्ला किस्मैन हासिलैन अला कुल तकदीरिन इन नमा युसम्मयान बिल बय्यिन व गैर बय्यिन, मगर यह कि वो दोनों किस्में जो हासिल हो रही हैं हर तकदीर पर वो मौसूम होती हैं बय्यिन और गैर बय्यिन के साथ ही। कौलहु यदूम, मतन में आया था यदूम, कहते हैं मातिन का कौल यदूम अरज मुफारिक है लेकिन दाइम रहती है, जुदा होती नहीं, जुदा हो सकती है लेकिन होती नहीं। का हरकत इल फलकी, जैसे फलक यानी आसमान की हरकत, यह हरकत लफ्ज याद रखना यह रा पर फतहा है, हम अमूमन हरकत पढ़ते हैं, रा को साकिन पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में इस रा पर फतहा है। का हरकत इल फलकी, जैसे आसमान की हरकत है, फइन्नहा दाइमतुन लिल फलकी, इसलिए क्योंकि यह हरकत दाइमी है फलक के लिए, उसे जुदा नहीं होती। व इन लम यमतनिअ इन्फिकाकुहा बिन नजर इला जातिही, अगरचे मुमतनिअ नहीं है इसका जुदा होना नजर करते हुए उस फलक की जात की तरफ, आसमान से यह जुदा होती नहीं लेकिन उसकी जात की तरफ नजर करते हुए जुदा होना मुमतनिअ नहीं है बल्कि जुदा होना मुमकिन है, जुदा हो सकती है भाई, क्योंकि यह उसकी हकीकत में दाखिल नहीं है। यह माना है कि फइन्नहा दाइमतुन लिल फलक, यह हमेशा आसमान के लिए साबित है। व इन लम यमतनिअ इन्फिकाकुहा बिन नजर इला जातिही, अगरचे मुमतनिअ नहीं है इसका जुदा होना उस आसमान की जात की तरफ नजर करते हुए। कौलहु बिसुरअतिन, या वो आरज मुफारिक जल्दी जुदा होगा। का हुमरतिल खजिल व सुफरतिल वजिल, हुमरा कहते हैं सुर्खी को, खजिल ये सिफत मुशब्बा है शर्मिंदा, वो आदमी जो शर्मिंदा हो उसको खजिल कहते हैं, जैसे जो आदमी पिटाई करता है आप उसको जारिब कहते हैं, लेकिन जारिब क्या है इसमें फाइल, और ये खजिल क्या है सिफत मुशब्बा है, फाइल वजन पर सिफत मुशब्बा आम इस्तेमाल होती है। कहुमरतिल खजिल, जैसे शर्मिंदा आदमी की सुर्खी यानी उसके चेहरे की सुर्खी। व सुफरतिल वजिल, सुफरा कहते हैं जर्दी को, जर्द रंग हो जाना। वजिल ये वही सिफत मुशब्बा है फाइल वजन पर, वजिल डरा हुआ, वो आदमी जो डर गया हो खौफजदा हो गया हो। व सुफरतिल वजिल, और जैसे डरे हुए आदमी की जर्दी यानी उसके चेहरे की जर्दी, ये जल्दी जुदा हो जाते हैं। कौलहु अव बुतून, या वो देर से जुदा होती है। कशबाबी, जैसे के जवानी है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।